ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करूंगा कि बैज और गुलदस्ते से हमारे मेहमानों का स्वागत करें। यह हैं भ्राता श्री लिंगराजपति जी, जो कि उड़ीसा से पधारे हैं, निदेशक हैं सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के। आपका धन्यवाद, आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और यहां पधारे भ्राता लिंगराजपति जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर आरपी गुप्ता जी, आप मुख्यालय संयोजक हैं मूल्य और आध्यात्मिक शिक्षा कोर्स आबू पर्वत में। प्रोफेसर आनंद के जोशी जी, जो कि संस्थापक और पूर्व कुलपति हैं सीएमआर विश्वविद्यालय बेंगलुरु से, बहुत दूर से पधारे हैं, आपका स्वागत है। प्रोफेसर आनंद के जोशी जी, तो जो आज का विषय है बहुत ही रोचक है, क्लीन द माइंड एंड ग्रीन द अर्थ, यानी कि धरती को हरा भरा करने के लिए मन की स्वच्छता बहुत जरूरी है। और इसकी शुरुआत के लिए मुझे कहानी याद आ रही है, एक वो कहानी आप सबने भी सुनी है। जब मैं कहानी शुरू करूंगा तो आप सब कहेंगे भी हाँ हमें आती है, लेकिन फिर भी उसको दोहराना बहुत बहुत जरूरी है। ये कहानी है उस मुर्गी की जो हर रोज एक सोने का अंडा देती थी। सुनिए सबने, जरा हाथ खड़ा करो, किस किसने सुनी है? अरे वाह, सबने सुनी है, वेरी गुड। तो क्या हुआ कि उसका मालिक हर रोज वो अंडा बेचता था और धीरे धीरे बहुत अमीर हो गया। अब क्या होता है, एक विकार है जो हमारे मन को गंदा करता है, उस विकार का नाम है लोभ। लोभ एक ऐसा प्रबल विकार होता है जो बाकी सब विकारों को दबा देता है। जो लोभी व्यक्ति होगा, अगर आप उसको 50 गालियां भी दे दोगे तो वो सुन लेगा, क्योंकि उसे आपसे कुछ प्राप्त होने वाला है। तो अपमान भी सहन कर लेगा, निंदा भी सहन कर लेगा, लेकिन लोभ नहीं छोड़ेगा। तो उसके मन में विचार आया, भाई हर रोज बस एक ही अंडा, क्यों ना मैं एक ही बार में सारे अंडे बाहर निकाल लूं। तो आप सब जानते हैं, उसने छुरा लिया बहुत तेज वाला और मुर्गी का पेट फाड़ डाला और वहां कोई अंडा नहीं था। तो जो उसकी प्राप्ति होती थी उससे भी वो वंचित हो गया। तो आज का मानव भी मुर्गी के मालिक जैसा ही है, जो प्रकृति का दोहन करते 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 सारा कुछ एक ही बार में ले लेना चाहता है, जिसे हम अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। उसके स्थान पर मेरे अंदर इतना लालच है कि पूरे का पूरा जंगल काट करके मैं कॉलोनियां बिछा देना चाहता हूं। जो प्राकृतिक संपदा है उसका दोहन एक ही बार में कर लेना चाहता हूं। और अपने लिए कितना बड़ा खतरा, मुर्गी की तो मृत्यु हुई थी, यहां तो सारी जो धरती है वो विनाश के कगार पर आ चुकी है। हमें ग्लोबल वार्मिंग की खबरें सुनते हैं, जो क्लाइमेट चेंज है हम उसकी बात करते हैं। इन सब का एक ही कारण है और वो है मानव का लालच, लोभी, लोभ। हम विकास की अंधी दौड़ में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम खुद अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारते हैं। मैं आपको भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे पास बहुत विशेषज्ञ वक्ता बैठे हैं। तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया जो समय उसमें दिया गया है उसी में ही आपने अपनी बात खत्म करनी है, ताकि हम समय पर कार्यक्रम की समाप्ति कर सकें। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करता हूं प्रोफेसर आनंद के जोशी जी को कि कृपया आप इस विषय पर अपना वक्तव्य दें।
नमस्कार। आई डीपली अपोलोजाइज बिकॉज माई हिंदी इज सो पुअर, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एब्सॉर्ब मी। इट इज बेटर दैट आई परमिट मी टू स्पीक इन इंग्लिश।
कोई बात नहीं, आप मिक्स लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं।
या थैंक यू सर। सर आई रिस्पेक्टफुली एडमायर एंड ऑल्सो द रिस्पेक्ट द पॉजिटिव वाइब्रेशन दैट इज बीइंग क्रिएटेड इन दिस पर्टिकुलर इवेंट। सिंस लास्ट आई गॉट द इन्वाइट टू गेट इन टू दिस पर्टिकुलर मोड, even though on the spiritual education for happy and peaceful life. In the days of conflicts and confrontations in the society and the world over, here someone talking about harmony, humanity and well-being of human beings. And that too it's none other than a movement spread across the world. But on the pretext of this, to give a preamble of it, the Treat the Mind, in chapter 16 of Bhagavad Gita, Lord Krishna has defined Sattvik Vyakti ka Lakshan hai, Sattvik Manushya ka Jeevan Lakshan. Krishna Bhagavan ne define kiya hai. What are all the devil and demonic nature and all of sattvic lakshan ka. And aapko batana chahta hoon, Harvard Business School, US mein, oh, professional traits of an executive, personality traits that we call it about. The personality traits of a profession in Harvard University defines exactly the same traits which Bhagavad Gita mein Krishna ne almost several thousand years of ago he has talked about it. So it's all about mind mapping, what we call it in our English. So in fact, this particular event, we talk about it. Vidya mein hum lete hain, wo paroksha vidya hai aur aparoksha vidya bhi hai. Paroksha vidya kya hai? प्रिंसिपल से, टीचर से, वो परोक्ष विद्या, इट इज ए इंस्टीट्यूशनल लर्निंग, इट हैपन्स इन द क्लासरूम, सब्जेक्ट के बारे में और एकेडमिक बारे में, सो ऑन सो फोर्थ। बट हियर व्हाट इज हैपनिंग सिंस यस्टरडे इन नेक्स्ट टू डेज इज अपरोक्ष विद्या। दिस अपरोक्ष विद्या कंबाइंस ऑन स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमनिज्म, माइंड, द बॉडी, द सोल, द मेडिटेशन। This creates, builds a human being. So, what we call here is cultural collaborations, what I call. I don't know what this is called in Hindi, but this is what is, this event is called the cultural collaborations. And even in education, it's not just now in school education where we are talking about moral education. Today, the IIT Varanasi, IIT Hyderabad, Punjab Technical University and UP Technical University, they have introduced 4-credit course to all engineers mandatory on human values for engineers. Engineering ka padhai mein human values ka credit course, that means marks dete hai. So, what was the reason behind this introducing this particular program? That program talks about three areas. One is, for engineers, how to handle success. After graduating, almost everybody who gets education, he gets a success in life. How to handle success? Not everybody can handle success, because to handle success, it is all about the mind and the value system. For example, if you take the example of Amitabh Bachchan and Rajesh Khanna, Amitabh Bachchan, even today it is, he is valued in the market because his mindset, his behavior, his attitude is in the right perspective. His predecessor, superhero Rajesh Khanna, is not able to market himself if he had to handle the success there. And the second one, that topic of IIT talks about right living. Right living. वो समझ से कौन से कैसे हम जीवन बिता देंगे. सो इसके बारे में वो क्रेडिट कोर्स बताते हैं राइट लिविंग. अर्लियर वी टू टॉक अबाउट सिंपल लिविंग इज अ सस्टेन इज बेटर फॉर ए सस्टेन्ड इकोनॉमी. सिंपल लिविंग. बट टुडे कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज सिंपल लिविंग. व्हाट एवर यू अर्न यू स्पेंड दैट मच. डोंट स्पेंड बियॉन्ड यूर इनकम. That is not sustained for the future. So that is the right living. Itna aap earn karte hai, itna hi aap spend kare. So that is the kind of simple living in the current context. And the right, the last one which it talks about it is right connect. It talks about the right connect. I mean, in fact, man is identified with the company he keeps. The friends he makes, it all depends on people recognize you that you are with the right company, on the positive people, with the right people in the society. So these are all about the human values which are part of the credit course. So each of the education system there, whether right from IIT to school education, the focus is on human values. In fact, for the schools, the teachers are here. I would like to focus on, there is something called power of prayer. There's two things. One, power is power of dharma and power of prayer. I would like to briefly talk about the power of prayer, wherein why we go to a temple just before the examination. Students do. In fact, we used to go like that and have some one or two coconuts offered to two coconuts. Then another friend offers four coconuts to the temple. Next, Bhagwan lalchi nahi hai. If you break two coconuts, you will not give more marks. Why we go to the temple? When we go to the temple, we close our eyes. We concentrate on a cosmic energy there in the temple. We concentrate on the cosmic energy in the temple with our closed eye. We developed positive energy, and with our examination, the student is so suppressed emotionally, physically, with lot of tension, he cools down his mind. Next day morning, when he goes to the examination hall, the ideas just start flowing because his mind is stable. It is not vibrating due to tensions because he has developed the positive energy in his body. That's what is called power of prayer. In fact, it is not, across the religion, irrespective of the religion, I request you to ensure that the power of prayer drives not just physical, mental energy, positive energy, it also creates a physical energy due to neuropsychological stability. Then, in fact, when we talk about the psychological aspects of it, about it, as a teacher, it is not just academic. There are four factors which our talks about it in the spiritual, emotional, academic, and moral. These are the four factors which should be part of the total curriculum of to the student, so that at a young mind, a student is able to absorb these things much better than once we grow and our mind gets adulterated. So, just to, we are trying to see a lot of things in the current society. There is a Harvard school, a center for adult development. So for senior citizens and parents and elders, how they interviewed in that Center for Adult Education, the recent research report talks about it. How you define the quality of a good life? Harvard is doing a research on the quality of a good life. I think no institutions in India are doing it on these things. And recent reports talks about it. The institution is established since 1938, and since then the research is being done. The recent report says why the longevity, the people in the America they are talking about, is someone who is strongly connected with society is happy. First output of the research. Strongly connected with the society. Not about the connected with the profession, whatever the profession that he has got. Not about money. Not about status. The happy person is someone who is connected with the society. And secondly, someone who is connected with the family. Family is most important. Ultimately, that's the consolation of the whole process of stress. And they have interviewed around 100 people with above 80 age. What is the secret of life after 80 years? The 100 people above 80 age, they have come out with their own opinion that emotional bond with family members is the reason for their longevity. Emotional bond with the family members. I request each one of you here that we have to take care of our elders in the family. We have to take care of the elders in the society. We have to take care about the value system wherein. So whoever is the elder by age or whatever it is, we should know how to treat them. Coming to the most important part of the green. In fact, the second one I wanted to talk about, power of dharma. In fact, against our Upanishads talk about dharma is the relevance of ancient wisdom. I think another 5 minutes. It talks about the relevance of ancient wisdom to the modern times. This, it includes responsibility also. It's not just the power of, it is a responsibility of the, but the Upanishad talks about the Pancha Mahabhutas. You must have heard about this space, air, water, fire and earth. And all are interconnected. It's not that, it is, the Upanishad talks about if we are not, it is considered as the earth is the manifestation of goddess. We call it as a mother earth. So mother is the most important person in one's family, in one's society. It is the equivalence to the god, and the second equivalent status is given to the earth. If we are diluting the earth, we are exploiting the, I think we are exploiting our mother, the goddess. So the Upanishads talks about the interconnecting between these five panchabhutas, that is science, space, air, water, fire and earth. The, our responsibility to take care of them. And the last one, which we talk about it, in our last but one, even when we talk about Janamagana Mana, our Rashtra Gita, we salute and remember our natural resources. I think no other Rashtra Gita, I don't know much about the other countries' Rashtra Gita, but Indian National Anthem talks about acknowledging the natural resources in India and saluting it. That is our Rashtra Gita. In fact, it is embedded in this one. And the last one, I would like to acknowledge, in Upanishads, we talk about Rana, Devarana, Pitarana, Rishirana. In the Devarana, when we talk about Devarana, it is nature. We are Devarana with not just to the God, the nature also. And Pitarana, obviously the parents, you cannot substitute them. The last one is Rishirana. Rishis, the creators of knowledge are Rishis. But here, the Brahma Kumaris, you are creating the knowledge. You are creating the human relation, developing human relation. You are creating the spiritual sciences. I think I acknowledge that this particular organization as an acknowledgement for the society should acknowledge the society, this center for providing a spiritual vibration in the society. Thank you very much.
बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आनंद के जोशी जी. अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे अगले वक्ता श्री लिंगराजपति जी को, जो निदेशक सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ओडिशा से आए हैं. अब हम इनके विचार सुनेंगे.
ओम शांति. हमको तीन बार ओम शांति कहना है, आप लोग मेरे साथ कहे. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. आज इस सुंदर महल ईश्वरीय विश्वविद्यालय आयोजन किया है, सुख और शांतिमय जीवन के लिए आध्यात्मिक शिक्षा सारी विश्व को देने के लिए प्रयास है. ये जो माहौल अभी बना हुआ है, उसी समय में जो टॉपिक दिया गया है, क्लीन द वॉल ग्रीन द अर्थ, वही विषय में जांच करने के लिए, आप लोग को सूचना देने के लिए, सुंदर भावनाओं के साथ आप लोग के विचारधारा जागरण करने के लिए जो अतिथिगण मंचासीन होते हैं, मैं उन लोग का चरण पर मेरा मथानत प्रणाम करता हूं. आप लोग जो सामने बैठे हैं, इतना ध्यान से सुन रहे हमारा बात को, अपनी इच्छा से आ रहे, आप लोग भी मेरा प्रणाम करता हूं. मैंने जो तीन बार ओम शांति बोला है, आप लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं. मैं प्रार्थना करूंगा परमपिता परमात्मा को, पहला बार ओम शांति, हम जितना भी आत्मा यहां पर बैठा है, सबका भलाई करो, सबको सुख दो, सबको आनंद दो. दूसरा बार जो ओम शांति हम बोला है, सर अभी बोले थे, ये धरती हमारा है, हम लोग का ये धरती, हम जन्म लिए हैं, वो हमको पालन पोषण किया है, उसका रखन बेखन के लिए हमारा मन में सद्भावना जागृत करो. इसीलिए परमात्मा को हम लोग प्रार्थना करें, जे आज का जो टॉपिक है ग्रीन द वर्ल्ड ग्रीन द अर्थ, ये सद्भावना के साथ हम परमपिता को ये निवेदन करूंगा, हमारा मन में वो जागरण सृष्टि करे, हमारा धरती मां शांति मिले. तीसरा शांति जो है, पूरा अंतरिक्ष जिसका अंदर हम लोग बैठा है, जो देव का भावना होता है, वही देव का सद्भावना से जहां पे परमपिता सूक्ष्म स्वरूप पे विराजमान है, वही परमपिता का आशीर्वाद ये धरती का पर हो, हमारा पर हो, हमको कल्याण करे. इसीलिए मैं भगवान को इतना प्रार्थना करूंगा. सुंदर टॉपिक है. मैंने जब यहां बैठा साथ एक कहानी बोले आपको, मुर्गी का कहानी सब सुने हैं. आज हम लोग जहां बैठा है यहां पे, ये आध्यात्मिक शिविर पे आते हैं, आप लोग तो शिक्षक लोग हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं स्कूल में. मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज का रखन बेखन करता हूं, बच्चा लोग भी पढ़ते हैं. प्रॉब्लम बहुत होता है, आप लोग को पता होता है, स्टूडेंट का मन में सद्भावना जागरण नहीं होता है, उसका माइंड हमेशा जाम होते हैं. क्या क्या चीज अंदर घुस जाता है वो हमको भी पता नहीं है, किस चीज पाने के लिए वो लोग आते हैं. कोई एक पर्टिकुलर चीज उसको मिलना चाहिए, जो चीज में को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, वो नहीं है। अगर वो बोलते सर वो टीचर का पढ़ाई अच्छा नहीं लगे, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये टीचर मास्टरी है, दूसरा टीचर को आप डिप्यूट कीजिए, हम लोग बोलते ठीक है पहले तो सुनो वो तो सब्जेक्ट बताते हैं, नहीं सर नहीं चाहिए, दूसरा को आप अपॉइंटमेंट कर दीजिए। दूसरा जाए तो नहीं नहीं सर वो पहला वाला अच्छा था, दूसरा वाला अच्छा नहीं है। उसका मतलब है वो जो बोलते हैं स्टूडेंट लोग को उसका बात को सही तरीका से अंदर नहीं लेते हैं। अभी हमारा सोच इतना गंदा हो जाता है, हम जो कुछ करने को जा रहे उसका ऊपर हमारा भरोसा नहीं होता है। मां बाप जैसे बच्चे को पढ़ाते ही सोच रखते ऊंची सोच, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बनो, समाज का एक अच्छा आदमी बनो, कैसे होगा? हमको ये पहले बताना चाहेगा, हमको सोच करना पड़ेगा, हमारा दिल को सोच करना पड़ेगा, हमारा मन को सोच करना पड़ेगा। परमात्मा का साथ जहां पे सुख शांति आनंद भरपूर है, वहीं से हमारा अगर एक करुणा आ जाए, उसका संतान हम है, वो सुख हमारा सद्भावना हमारा मन में जागृत हो तो हम बच्चे को ट्रांसफर करते हैं, ये सोसाइटी को ट्रांसफर करते हैं, ये स्टूडेंट लोग भी ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए भगवान बोलते हैं मेरा आठ प्रकृति। मैंने भगवद गीता पढ़ा है, उसमें श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जब शिक्षा देते, अर्जुन का मन में भी सोचता नहीं था, विषादग्रस्त थे, क्या करे नहीं करे, वो क्या करते थे ना, भगवान को बोले भगवान मेरा माइंड डिस्टर्ब है, आई एम नॉट डूइंग दिस व्हाट पर्पली, आई एम डिस्टर्ब, ए डिस्टर्ब माइंड नेवर गिव्स सक्सेस आउटपुट। भगवान ने क्या बोले, ये प्रकृति मेरा सृष्टि है। इसीलिए एक श्लोक में आपको बोलता हूं, आप लोग भी पढ़ा है, भूमि आपो नलो वायु खंग मनो बुद्धि एवच अहंकार इतिमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अभी जो चर्चा है सर ने अभी बोला है बहुत सुंदर से, दिस फायर वाटर, वही बात है, भूमि मतलब दिस अर्थ। आप जानते भूमि आप अनल वायु, खंग मतलब आकाश, द स्काई, ये पंच महाभूत से हम लोग आए हैं, हमारा शरीर इसी प्रकार से गठन है। उसके अंदर क्या डाल है, मन बुद्धि अहंकार। ये जो मन है, ये माइंड, ये स्टेबल नहीं है, इतना आसान नहीं है स्टेबल करने के लिए। एक सोच मन, आज सवेरे हम आए थे, मुरली हम सुने हैं, बहुत बढ़िया लगा, बहन जी बोले थे, मन चल चंचल है हर्ष का तरफ, एक घोड़ा जैसे दौड़ते हैं मन ऐसे ही दौड़ते हैं। हमारा जो इंद्रिय है वो इंद्रिय मन को चंचल कराते हैं, हमारा इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, कैसे होगा? अगर माइंड में कुछ घुस जाता है माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ चीज को देखते हैं उसको पाने के लिए हम सोचते हैं, कुछ चीज को चाहते हैं उसको छूने के लिए सोचते हैं, ये जो कुछ गाना को हम सुनते उसको अच्छा से सुनने के लिए प्रयास करते हैं, फिर भी बोलते हैं ना ना अच्छा नहीं है, बीच में ही वो थोड़ा सा म्यूजिक अच्छा नहीं था, क्या चाहते हैं मन, हमको भी समझ में नहीं आता है। हम एक पर्टिकुलर विषय पर ध्यान देते फिर भी मन गड़बड़ हो जाता है, पर्टिकुलर स्टेबल में नहीं आते हैं। अगर मन स्वच्छता में नहीं आता है, हमारा दिल के अंदर सद्भावना, सद्विचार, सत् स्वच्छता नहीं आते है। हम हमेशा विषय पर ध्यान देते, विषय पर ध्यान देने से अगर वो नहीं मिलता है, कामना भर जाते हैं, हम उसको हासिल करने के लिए दूसरा चीज हम अपना लेते। इसलिए भगवान ने फिर भी कहा, एक पर्टिकुलर विषय को, वासना को अंदर में आप डाले तो उसे आपका अहंकार बढ़ते है, अहंकार से बुद्धि पूरा नष्ट हो जाती है। धायो तो विषय अनुपुंस संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भंसात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। डिजायर, क्या डिजायर? मैं अभी अगर ये आपको एक बात बोलूं, हम लोग परमात्मा का एक अंश है, परमात्मा का पास से सुख है, शांति है, आनंद है, वो सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद। इस सच्चिदानंद का स्वरूप से हम लोग का आत्मा आते हैं। ये पेड़ के तरफ से आप लोग जैसे यहां पे जितने भी बैठे हैं, ये पृथ्वी में जितने भी बैठे हैं, परमात्मा एक ही है, हम एक एक पेड़ का एक एक पत्ते है, हम एक ही है, हमारा ओरिजिन एक है, वो परम पिता है, हमारा पिता है। हम जो घर में रहते हैं, जो मकान पे रहते हैं, थोड़ी देर के लिए वो किराया पर हम रहते हैं, ये घर हमारा नहीं है, फिर ये शरीर छोड़ने का बाद ये आत्मा फिर परमात्मा के साथ लीन होगा। ये जो परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता संबंध जुड़ा हुआ है, उसका बीच में एक वासना होता है। क्या होता है? वासना। परमपिता हमको पैदा किया है, हमारा एक बॉडी है, बॉडी का अंदर एक मन है, बॉडी माइंड। ये माइंड मन हमारा यहां पे काम करता है, दिल पे नहीं। उसके बाद क्या होता है? इंटेलेक्ट, बुद्धि भी होता है, विचार भी हम लोग करते हैं, जो भी विचार, जो भावना आते हैं, सब लोग विचार समान नहीं है। एक पर्टिकुलर टॉपिक में अगर विचाराधारा आप लोग को दिया गया है, विचार अलग अलग होगा। ये बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट BMI, ये क्या है? ये बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट ये हम लोग को सूचित दे देता है, ये हमारा विचाराधारा पर जो हम इस स्थूल शरीर से विचार करते हैं, माइंड को कंस्टेंट करते सोचते हैं, हम शरीर पे ठीक से उपयोग करके ये काम करेंगे, हमारा बुद्धि उसका ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। माइंड बुद्धि का सोच अलग होता है, इसलिए ये सारी तीनों को हम बोलते हैं उपाधि, डेजिग्नेशन। बॉडी इज वन डेजिग्नेशन, माइंड इज वन डेजिग्नेशन, इंटेलेक्ट इज वन डेजिग्नेशन। बॉडी क्या करते हैं? परसीव करते हैं। बॉडी परसीव करता है, जो परसीव करता है वो परसीव हो रहे। माइंड क्या करता है? फील करते हैं, जो फील करते हैं वो फील हो रहे। इंटेलेक्ट क्या करता है? थिंक करते हैं, जो थिंक करते हैं वो थिंक कर रहे, उसको बोलते हैं जीव।
लिंगराजपति जी, हमारी थोड़ी समय सीमा है।
ठीक है, मैं खत्म कर देता हूं। ये जो जीव है वो बॉडी परसीव करते है क्या ना ऑब्जेक्ट्स, माइंड परसीव करते है इमोशंस, इंटेलेक्ट परसीव करते है थॉट्स। ये तीनों अगर मैं बोलने को, ये आप लोग के बोलने का सार्थक तो सिग्नल दे दिए है, ये मैं बोलता हूं। अगर बॉडी जो चाहते है ऑब्जेक्ट्स को पाने के लिए, ऑब्जेक्ट्स का पीछे हमारा बुद्धि जाते है, ये सोच विचार, ये शुद्ध विचार नहीं आते है। अगर बुद्धि को हम लगाते हैं, ये मन पर विचारधारा हम सही से करते हैं, ये हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा, माइंड स्वच्छ होगा, ये धरती अच्छा से रहेगा, ये जगत अच्छा से रहेगा, हमारा जो साधना ठीक होगा। इतना मैं बोलता हूँ, आप लोग बच्चा को सिखाइए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
शुक्रिया भ्राता श्री लिंगराज पति जी, आपने बहुत ही गूह्य विचार प्रस्तुत किए। तो अभी हमारे आज के जो चेयरपर्सन हैं डॉक्टर आरपी गुप्ता जी, इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपनी प्रेजेंटेशन लेकर आए हैं आप सबके लिए। ओम शांति।
क्लीन द माइंड एंड ग्रीन द अर्थ। मन को स्वच्छ एवं धरती को हरा भरा बनाएं। जहां से भी आप आए हैं, आपने बहुत बड़े बड़े बोर्ड देखे होंगे, क्लीन द सिटी, ग्रीन द सिटी। शहर को स्वच्छ बनाइए और शहर को हरा भरा बनाइए। लेकिन देख रहे हैं उसका उल्टा, ना तो शहर साफ हो रहे हैं ना हरे भरे हो रहे हैं। आज से 9 साल पहले परम आदरणीय राजयोगी मृत्युंजय भाई जी के दिमाग में एक प्रश्न उठा कि इससे बात नहीं बनती, तो उन्होंने एक कंसेप्ट ऐड किया और वो था जो आज का टॉपिक है, क्लीन द माइंड एंड ग्रीन द अर्थ। और ये ब्रह्मा कुमारी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो पिछले 9 साल से चल रहा है देश और विदेश में, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी का मानना है कि हम अपने घर की सफाई करते हैं। और आप प्रैक्टिकल देखते होंगे, रात को अंधेरे में पड़ोसी के घर कूड़ा डाल देते हैं, क्यों? पार्क में डाल आते हैं। कई बार हम नक्की लेक पर घूमने जाते हैं, वहां रेड़ियां खड़ी होती हैं, उसके साथ ही डस्टबिन लगा रहता है। लोग केले खाते हैं, डस्टबिन पड़ा हुआ है, डस्टबिन डालने की बजाय उसके बराबर में फेंक देते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि माइंड में कचरा भरा हुआ है, माइंड में वायरस है, माइंड में नेगेटिविटी है। जब तक उसको हम साफ नहीं करेंगे, उसको हम स्वच्छ नहीं बनाएंगे, उसको हम क्लीन नहीं बनाएंगे, तो धरती को हरा भरा बनाने की बात हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अगर माइंड में क्लीन कचरा है तो वो डिसीजन पावर खत्म हो जाती है, और जब डिसीजन पावर खत्म हो जाती है, क्या डिसीजन लेना क्या नहीं, वो उसके दिमाग से बाहर है। तो यदि हमें सही डिसीजन लेना है और इस धरती मां को हरा भरा बनाना है, तो हमें अपने माइंड को क्लीन करना पड़ेगा। तो आज के इस टॉपिक के 2 एस्पेक्ट हैं, एक क्लीन द माइंड और दूसरा ग्रीन द अर्थ। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं कि किस प्रकार से मन को हम स्वच्छ बनाएंगे। हमें माइंड को स्वच्छ बनाने के लिए दूसरों के पास जाने की जरूरत नहीं है, दूसरों से काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं है, दूसरों से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप से 4 क्वेश्चन करिए और उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करिए। और वहां पर देखिए कि कहीं ना कहीं उन क्वेश्चन के आंसर में गड़बड़ी है। गड़बड़ी है तो माइंड क्लीन नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे आप? क्या मैंने अपने विचारों में परिवर्तन किया है? अगर विचार ही अशुद्ध होंगे तो माइंड क्लीन कैसे हो सकता है? तो हमें विचारों को चेंज करना पड़ेगा, ज्यादातर या तो हम नेगेटिव सोचते हैं या वेस्ट सोचते हैं, लेकिन जब हम उसमें परिवर्तन करेंगे और पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, माइंड क्लीन होता जाएगा, डिसीजन पावर बढ़ती जाएगी और आप जो डिसीजन लेना चाहते हैं वो लेंगे। आपके जो विचार हैं वो कैसे होने चाहिए, ये हम ब्रह्मा कुमारी बहनें हमें बताती हैं कि योर थॉट्स शुड बी पीसफुल। आज सुबह भी बताया था कि जब तक माइंड पीसफुल नहीं होगा तब तक वो पावरफुल नहीं बन सकता। योर माइंड योर थॉट्स शुड बी पर्पजफुल। आप जो विचार दे रहे हैं उसमें कुछ उद्देश्य होना चाहिए, ये नहीं फालतू फालतू का कुछ भी आपने बक दिया उसका कोई असर नहीं होगा। योर थॉट्स शुड बी पावरफुल, उनका असर दूसरे लोगों के ऊपर पड़े, एंड योर थॉट्स शुड बी पॉजिटिव। तो इस प्रकार से हम अपने आप को चेक करेंगे कि ये कहां हम गलती कर रहे हैं और उसको सुधार खुद ही करेंगे, क्योंकि भाषण से कुछ नहीं होगा, हमें अपने आप से सोचना होगा और अपने आप में खुद परिवर्तन करना होगा। दूसरा, जो मन को स्वच्छ करने की बात हम करते हैं वो ये कि क्या मैं एक समय में एक ही प्रॉब्लम सोल्व करता हूं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। अगर आपके दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम एट ए टाइम घूमती रहती हैं तो आप क्विक और ठीक डिसीजन नहीं ले सकते। एक माता को झाड़ू भी लगानी है उसी टाइम और रोटी बनानी है, वो ये सोचे झाड़ू लगाऊं रोटी बनाऊं, झाड़ू लगाऊं रोटी बनाऊं, तो कुछ नहीं कर सकती, ना झाड़ू लगेगी ना रोटी बनेगी, मेहमान आएंगे और चले जाएंगे। तो हमें एक राइट डिसीजन, उसकी प्रायोरिटी देखनी है हमें कि कब कौन सा काम करना है। आप सभी कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, हमने एक फाइल खोली, वो खुली नहीं दूसरी ओर खोल दी, वो नहीं खुली तीसरी ओर खोल दी, क्या होगा, हमारा सिस्टम हैंग हो जाएगा क्योंकि हमने बहुत सारी फाइलें इकट्ठी खोल दी। इसी तरह हमने माइंड में भी बहुत सारी फाइलें खोली हुई हैं, उसका हमें सिस्टमेटिक चयन करना पड़ेगा, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, कौन सा अब करना है, कौन सा उसके बाद करना है, कौन सा उसके बाद, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको करने की जरूरत नहीं है, उनको हम खत्म भी कर सकते हैं। तो ये ABCD का फॉर्मूला आप याद रखें और प्रायोरिटी के आधार पर उसका चयन करें। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको बाईपास कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत जरूरी हैं वो हम करें। और जब इस प्रकार से हम एट ए टाइम एक ही प्रॉब्लम लेंगे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और माइंड में कोई टेंशन नहीं होगी। टेंशन तभी होती है जब बहुत सारी प्रॉब्लम हम इकट्ठी क्रिएट कर लेते हैं और वो सॉल्व नहीं होती। तीसरा, जो माइंड को स्वस्थ बनाने की बात हम करते हैं, ये हर व्यक्ति में आदत है, हम दूसरों के वकील बनते हैं और अपने जज बनते हैं। हम ये कहते हैं ये गलत है ये गलत है ये गलत है, और ठीक हूं तो मैं ठीक हूं, यही गड़बड़ होती है। इसका मतलब आपका मन स्वच्छ नहीं है, क्योंकि हम हमेशा दूसरे लोगों के कोई ना कोई फॉल्ट निकालने के आदि हो गए हैं, हरेक के फॉल्ट निकालते हैं, और जब फॉल्ट निकालते हैं तो उसका मन भी फॉल्टी हो जाता है। तो इसलिए दोष निकालना छोड़ दीजिए, अपने अंदर झांकिए। हरेक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई दोष ना हो। हम अगर दूसरों के गुण उठाते जाएंगे, अपने दोष निकालते जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके माइंड में बस बिल्कुल स्वच्छ माइंड होगा, स्वस्थता ही होगी। इसके लिए तीन चीजें हमें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यही है जो माइंड को पॉल्यूटेड करती हैं, जिससे आजकल सारी प्रॉब्लम है। जेलिसी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जेलिसी आप स्कूल में टीचर्स हैं उसमें बहुत सारी जेलिसी है, मैंने भी 33 साल पढ़ाया है, आपके बच्चों में बहुत जेलिसी है, और वो तो छोड़ दीजिए, आपके घर में एक नन्हे से बेटे ने जन्म लिया, मां उसको बहुत प्यार करती है, बाप उसको बहुत प्यार करता है, 4 साल के बाद एक दूसरा बच्चा आता है घर में, नेचुरली है आप बड़े हो गए, उसको मां ने थोड़ा सा प्यार करना शुरू कर दिया तो उन दोनों बच्चों के बीच में भी जेलिसी हो गई। वो बच्चा कहता है कि मां मुझे कितना प्यार करती थी, अब तो मेरा ख्याल रखना ही छोड़ दिया। तो जेलिसी ये बहुत बड़ी बीमारी है, हमें तहस नहस कर देती है। हेट्रेड, घृणा, ये भी हमारे माइंड को पॉल्यूटेड करती है, घृणा नहीं करनी है आपको। और लेग पुलिंग, लेग पुलिंग का मतलब ये नहीं कि उसकी टांग पकड़ के खींचे आप, लेग पुलिंग का मतलब है कि आप इधर की बुराई उधर, देखिए ये छोटी सी बच्ची और ये लड़का, देखो मुंह फेर लिया इसने मां से भी कि मैं नहीं बोलता आपसे, आप मुझे कितना प्यार करती थी, एक और गुड़िया आ गई तो सारा प्यार आपने उसी को लुटा दिया। जब आप हेटेड करते हैं, घृणा करते हैं, जिससे घृणा करते हैं उसका नुकसान हो या ना हो, लेकिन आपका नुकसान जरूर हो जाता है, आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, आपके चेहरे पर तनाव हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां इसी से हो जाती हैं। तो हमें इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। और एक रामबाण है, अगर हम माइंड को क्लीन करना चाहते हैं, और वो है, क्या मैं रोज राजयोग का अभ्यास करता हूं, क्या मैं मेडिटेशन करता हूं, ये मेडिटेशन ही आपके मन को स्वच्छ करेगा। 3 दिन आप यहां रहेंगे, सुबह का जो सेशन है वो आपको किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ना, क्योंकि वहां से एम्पावरमेंट मिलेगी माइंड को। तो इसलिए राजयोग के बहुत सारे फायदे हैं, आप बाहर डायमंड हॉल का चक्कर लगाएंगे, हर गेट के ऊपर और नीचे राजयोग के क्या फायदे हैं। लास्ट ईयर हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारी एजुकेशन विंग ने, मृत्युंजय भाई ने बहुत मेहनत कर वो स्लोगन बनाए थे, और वो डायमंड हॉल के चारों तरफ लगे हुए हैं हर गेट के ऊपर, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, उसको आप नोट करिए कि राजयोग से कितने फायदे हो सकते हैं। मैंने अपने कॉलेज में जब मेडिटेशन रूम बनाया था, और वहां से मीडिया ने बच्चों से पूछा कि राजयोग से क्या फायदे होते हैं, तो उन बच्चों ने ये 3 फायदे बताए थे जिसको मैंने यहां लिखा है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। दूसरा उन्होंने कहा कि यदि हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हमारी याददाश्त बढ़ जाती है, जो लेसन हम 1 घंटे में तैयार करते थे वो हम 1/2 घंटे में तैयार कर लेते हैं। और तीसरा, एनर्जी तो उन्होंने नहीं कहा था, वेस्टेज ऑफ मनी उन्होंने वर्ड यूज किया था, वेस्टेज ऑफ मनी मिनिमाइज हो जाएगी। अर्थात जब उनसे पूछा गया कैसे, तो उन्होंने बताया कि जब खाली पीरियड होता था तो हम या तो कैंटीन में घूमते थे या ब्रांडों में गाली ग्लोज करते थे, अब हम एक जगह बैठकर ध्यान लगाते हैं, साइलेंस में बैठते हैं, और उससे हमारी जो वेस्टेज है, हमारे पेरेंट्स की वेस्टेज है, वो हमारी कम हो गई। और जब आप राजयोग का अभ्यास करेंगे तो आपकी एनर्जी भी मिनिमाइज हो जाए, वेस्टेज मिनिमाइज हो जाएगी, और आपका माइंड क्लीन हो जाएगा। तो इन को अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इन चारों को आप फॉलो कीजिए आज के जाने के बाद, आप टीचर हैं, आप रोल मॉडल हैं, आपकी तरफ बहुत बच्चे देख रहे हैं, तो आपको रोल मॉडल बनना है। आपको ऐसा काम नहीं करना कि बच्चे आपके ऊपर उंगली उठा सकें, आप शायद 2 आंखों से उनको देखते हैं, आपकी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं वो 100 आंखों से आपको देख रहे हैं, इसलिए सबसे पहला जो है हाउ टू क्लीन द माइंड। जब एक चीज हमारी साफ है, एक सीढ़ी हमने पार कर ली तो दूसरी सीढ़ियां बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, पहली सीढ़ी में ही मेहनत है। दूसरा इसका पार्ट है ग्रीन द अर्थ, धरती को हरा भरा बनाए, और धरती को हरा भरा बनाने का एक ही साधन है, वृक्ष लगाएं। और अब क्वेश्चन पैदा होता है कि पेड़ हम क्यों लगाएं, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते। सबसे पहला बेनिफिट ऑक्सीजन, प्रोवाइड ऑक्सीजन। कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो इतना ऑक्सीजन आपको दे सके, पेड़ से मैक्सिमम ऑक्सीजन। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, अगर आप एक पेड़ लगा देते हैं तो आपने 4 लोगों की जान बचा ली, और अगर आप एक पेड़ काट देते हैं तो आपने 4 लोगों की जान ले ली। तो आप पुण्य का काम भी कर सकते हैं, आप पाप के भागी बन सकते हैं। तो हमें अगर कहीं पेड़ काटना पड़े एक, तो उसके बदले में 2 पेड़ हमें लगाने होंगे। अगर मजबूरी में कोई ऐसी चीज यहां काटने पड़ते हैं तो सबसे पहले तो हमें ऑक्सीजन मिलती है, उसके साथ साथ जो पक्षी हैं उनको शेल्टर मिल जाती है। चिड़िया आप देखते होंगे, या बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पक्षी हैं जो अपना घर उसी में बना लेते हैं, आपको शेल्टर मिल जाती है, घर मिल जाता है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। जहां पर पेड़ पौधे होंगे, हरियाली होंगे, केरला में क्यों लोग जाना चाहते हैं, तो वहां ग्रीनरी है। हिल स्टेशन पर आप क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां ग्रीनरी है, तो वो हमारे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। ये मिट्टी के रुकाव को भी, बहाव को भी रोक देता है, अगर पेड़ बहुत लगे हुए हों, अदरवाइज मिट्टी बह जाती है और हमारी उर्वरकता, फर्टिलिटी जमीन की कम हो जाती है। बहुत सारे प्रोडक्ट हमें देते हैं, फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं, मेडिसिन भी देते हैं, बहुत सारी चीजें वो हमें देते हैं। और आप अपने घरों के बाहर देखते होंगे कि घरों के बाहर आप पेड़ लगा लेते हैं, क्यों लगाते हैं? एक तो ठीक है आपको ब्यूटी पसंद है, लेकिन उसके साथ साथ गलियों में इतना शोर होता है, उस शोर को ऑब्जर्व करती है, उस शोर को रोकती है, इसलिए भी पेड़ हम लगाते हैं। तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। इसमें से कितने भाई बहन हैं जो हर साल किसी न किसी मौके पर एक पेड़ जरूर लगाता है? खड़ा करिए प्लीज। अच्छा, बहुत कम है, चलो आप आगे से ध्यान रखेंगे। देखिए, खाली जो पेड़ हैं वो माइंड और बॉडी के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। इसमें रिलैक्सेशन टेक्निक है, जब आप थक जाते हैं तो पेड़ की छाव में आप लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, और जो पेड़ है, ग्रीनरी है, वो 3H इसका एक सिंबल है। अर्थात हम जब ग्रीनरी में जीते हैं, रहते हैं, तो हेल्थ भी मिलती है, हैप्पीनेस भी मिलती है, और आपस में सद्भाव भी बढ़ता है। आप हैरान रह जाएंगे जानकर कि पिछले 10 सालों में पूरे वर्ल्ड में 1300 लाख हेक्टेयर जो पेड़ कटे हैं उसमें, उसको पूरा करने के लिए 1300 लाख हेक्टेयर भूमि में हमें पेड़ लगाने होंगे। अब तो थोड़ा थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले बहुत जंगले जंगल कटते थे। तो 1300 लाख हेक्टेयर भूमि में अगर हम पेड़ लगाएंगे तो पिछले 10 सालों में जो हमारी कमी है उसको हम पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए हमें हर व्यक्ति को कम से कम न केवल 2 पेड़ लगाने होंगे, जैसे हरदीप भाई ने कहा कि उसको छोड़ना नहीं है, उसको अपने बच्चे की तरह पालना करनी है, उसकी संभाल करनी है, लेकिन हम उसका 25% भी पूरा नहीं कर रहे जो हमारा ये सारा था।
हमारी थोड़ी समय सीमा आ रही
है। हाँ, अभी पांच मिनट है।
वो इशारा मिल रहा है।
इशारा तो मिलता रहेगा, अभी पांच मिनट है जी। हाँ, नेक्स्ट सेक्शन 6:45 होगा, बैठ जाइए 5 मिनट। तो उसका 25% भी हम पूरा नहीं कर रहे। अभी हाथ उठा तो भी केवल 15-20% ने हाथ खड़ा किया, हम पेड़ लगाते हैं। तो धरती माता कहती है कि सावधान, हम खतरे में हैं। अब हम इसको कैसे पूरा कर सकते हैं? आप ट्रीज को स्पॉन्सर करिए, जो बहुत सारी संस्थाएं हैं। जब आप बर्थडे मनाते हैं, आप कीमती गिफ्ट देते हैं, हम मना नहीं करते, लेकिन बर्थडे गिफ्ट एक प्लांट के रूप में दीजिए, जो अवेयरनेस मटेरियल है, पंपलेट है, उसमें आप स्पॉन्सर करिए, रेडियो पर, टीवी पर। हमारी ब्रह्मा कुमारीज में जो इसके फाउंडर संस्थापक थे, उनको भी नेचर से बहुत प्यार था। हमारी दादियों को, हमारे वरिष्ठ भाइयों को इस पेड़ से बहुत ही प्यार है। और वो जैसे बताया कि समय समय पर हम पेड़ लगाते रहते हैं। इन वृक्षों का आध्यात्मिकता से बहुत सारे संबंध हैं। हमारे बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर रहे हैं जिन्होंने इसके पेड़ के नीचे ज्ञान मिला, बहुत सारा समय इसके अंदर बिताया। और बहुत सारी संस्कृतियां हैं जो पेड़ की पूजा करते हैं। तो इसलिए अब हमें यहां से क्या लेके जाना है, हमें अच्छा करना है ताकि हम अच्छे बन जाएं, हमें योगी बनना है ताकि हम पवित्र बने, हमें सिंपल रहना है ताकि हम देश के लिए एक सैंपल बन जाएं, क्योंकि आप रोल मॉडल हैं। कर्मों की फिलॉसफी है कि यदि हम नेचर से प्यार करेंगे, नेचर की हेल्प करेंगे, तो नेचर भी हमारी हेल्प करेगा। परमपिता परमात्मा हमें इशारा दे रहे हैं, कोई भी ऐसा कर्म ना करो भाई जो फिर पड़े पछताना, क्योंकि जो आपने कर्म जो बोया है उसका फल तो काटना पड़ेगा, चाहे अच्छे के रूप में चाहे बुरे के रूप में। अब एक मिनट मैं आपकी ओर लूंगा, सभी खड़े हो जाएंगे, एक प्रतिज्ञा करेंगे, क्योंकि आप पवित्र स्थान पर आए। खड़े हो जाएंगे सारे, सभी प्लीज, हमारे स्टेज के जो महानुभाव हैं वो भी खड़े हो जाएंगे, हाथ को सीधा कर लेंगे। जो मैं बोलूंगा वो आपको बोलना है, और केवल बोलना नहीं है, वो जाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, धरती को हरा भरा बनाओ, धरती पहने एक ही गहना, पेड़ लगाओ मानो कहना, एक पेड़ लगाओ आप, एक लगाएं हम, झूम उठेगी धरती सारी, चम चमा चम चम, चम चमा चम चम। थैंक यू, ओम शांति।
तो डॉक्टर आरपी गुप्ता जी ने छम छमा छम छम करवा दी सबकी, और धरती माता की भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आरपी गुप्ता जी। अब मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करूंगा कि हमारे मेहमानों का को सौगात दे करके उनका मान बढ़ाएं, सम्मान करें। सबसे पहले भ्राता आनंद के जोशी जी। हमारी सीनियर बहनें हैं, त्यागी तपस्विनी राजयोगिनी बहनें। ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए डॉक्टर आरपी गुप्ता जी, लिंग राजन जी, हमारी राजयोगिनी तपस्विनी बहन जी, उनका सम्मान करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी।